नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने में जनजातीय सहकारी समितियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी को संस्कृत बुलेटिन के प्रसारण के 50 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और महिला क्रिकेट में चेन्नई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दिया। स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 8 विकेट लिये। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।
मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने 30 जून के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि आज हूल दिवस मनाया जाता है। ये दिन वीर सिद्धो और कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है और झारखंड के इन सपूतों का सर्वोच्च बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया।
इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। मानसून के उल्लेख के साथ श्री मोदी ने केरल में बनाए जाने वाली विशेष छतरी कार्थुम्बी का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता।
केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो है कार्थुम्बी छाते और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापड़ी में। इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती।
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में उत्पादित अराकू कॉफी का भी उल्लेख किया। अराकू कॉफी की खेती से लगभग 1.5 लाख जनजातीय परिवार जुड़े हुए हैं। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने के लिए गिरिजन सहकारी समिति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के स्नो मटर का उदाहरण देते हुए कहा कि स्नो मटर की पहली खेप हाल ही में पुलवामा से लंदन भेजी गई थी। उन्होंने चाकुरा गांव के अब्दुल रशीद मीर को गांव के अन्य किसानों की भूमि को एकीकृत करके स्नो मटर उगाने की पहल करने का श्रेय दिया और इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में गौरव अर्जित कर रही है। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान का भी उदाहरण दिया जहां इस वर्ष मई में उस देश के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जयंती मनाई गई। योग के बारे बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है।
मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम् किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम् आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बेंगलुरु के कब्बन पार्क में ऐसे ही एक प्रयास का उल्लेख किया और कहा कि प्रत्येक रविवार को इस पार्क में बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आषाढ़ी बीज के लिए भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हूल दिवस पर संथाल विद्रोहियों के सभी अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष करने वाले सिद्धो और कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जैसे वीरों के बलिदान की अमर कहानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना के इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानून के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छानुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों, चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस विषय पर गहन चर्चाएं और विश्लेषण किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कल से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जबकि औपनिवेशिक कानूनों में सजा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। आज मुंबई में तीन नए कानूनों के संबंध में आयोजित एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाए गए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर की यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन की यात्रा के दौरान एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीन अल सानी से भेंट करेंगे। डॉ जयशंकर दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। जनरल मनोज पांडे चार दशक से अधिक की सैन्य सेवा के बाद आज थल सेना अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका कार्यकाल परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने के अलावा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उनके मजबूत प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। बांग्लादेश में ढाका में भारतीय उच्चायोग ने आज वृक्षारोपण अभियान वन ट्री फॉर मदर अभियान शुरू किया। बांग्लादेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री साबिर हुसैन चौधरी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उच्चायोग परिसर में पौधे लगाकर संयुक्त रूप से इस अभियान को शुरू किया। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य बोर्नो में कल कई आत्मघाती बम हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए घटनास्थल की घेराबंदी कर सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना ने कर्फ्यू भी लगा दिया है। अब तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में चेन्नई में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 266 रन बनाए। भारत की स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को आउट करके इतिहास रच दिया है। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। स्नेह राणा टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित कर दी। फॉलो ऑन मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी खेल रही है। भारत ने दूसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में कल रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आपात विभाग और ऑपरेशन कक्ष आज सुबह 7:30 बजे से पूरी तरह से शुरू हो गए हैं। एम्स ने सूचित किया था कि शुक्रवार को तेज बारिश के कारण ट्रॉमा सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। अब ट्रॉमा सेंटर के सभी ऑपरेशन कक्ष शुरू हो गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात सबके घर के सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना पर रात 9:30 बजे से परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के कुछ हिस्सों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष भागों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में अगले 5 से 6 दिन के दौरान गरज के साथ मध्यम से तेज वर्षा होगी और बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने में जनजातीय सहकारी समितियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी को संस्कृत बुलेटिन के प्रसारण के 50 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।